पेश हैं आज के मुख्य समाचार विशाली जैन के साथ। न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया में आज दर्ज हुई संयुक्त 48 कोरोना संबंधी मृत्यु। भारत में आज से शुरू होगी गणतंत्र दिवस की परेड रिहर्सल। और जोकोविक मामले में टेनिस ऑस्ट्रेलिया के अध्यक्ष क्रेग टिली ने दिया बयान। और अब खबरें विस्तार से। न्यू साउथ वेल्स में स्कूली शिक्षकों और छात्रों की अगले सप्ताह स्कूल खुलने के बाद से नियमित रैपिड एंटीजन जांच की जाएगी ताकि कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। प्रीमियर डोमिनिक पेरोटे का कहना है कि बच्चों की स्कूल लौटने पर बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि रहेगी।
As a parent, I know that many parents across the state are anxious about bringing kids back to school. Importantly though, we can assure parents and teachers right across New South Wales that we can do so in a safe way. Part of that plan today involves providing rapid antigen tests for primary and secondary students and for teachers right across our state.
कोई भी पॉजिटिव कोरोना मामला आने पर स्कूल बंद नहीं किया जाएगा और छात्रों और शिक्षकों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी नहीं की जाएगी। सेकेंडरी स्कूल में छात्रों और शिक्षकों के लिए पहले से लागू नियम जैसे अनिवार्य मास्क अब भी जारी रहेंगे। इसी के साथ कक्षा 3 और उससे अधिक के छात्रों के लिए मास्क पहनने की हिदायत भी जारी की गई है। ये घोषणा तब आती है जब आज न्यू साउथ वेल्स में 20,324 नए कोरोना संक्रमण और 34 कोरोना संबंधी मृत्यु दर्ज की गई हैं। इसी के साथ 2,712 कोरोना मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 179 गहन चिकित्सा केंद्र में देखभाल पा रहे हैं। उधर विक्टोरिया ने आज 14 कोरोना संबंधी मृत्यु और 13,091 नए स्थानीय रूप से अधिग्रहित कोरोना मामले दर्ज किए हैं। राज्य में फिलहाल 1,002 कोरोना मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 120 गहन चिकित्सा केंद्र में हैं और 44 लोगों को वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ रही है। आज सामने आए राज्य के कोरोना आंकड़े 3 जनवरी के बाद से सबसे कम हैं। इसी के साथ यह अनुमान भी लगाया जा रहा है कि विक्टोरिया में कोरोना की लहर अपने चरम को अब पार कर गई है। विक्टोरिया सरकार अब जल्द ही 31 जनवरी से स्कूल लौटने वाले बच्चों और शिक्षकों के लिए सुरक्षा नीति की घोषणा करने वाली है। ऐसी आशंका है कि बच्चों के लिए रैपिड एंटीजन जांच इस प्रक्रिया का हिस्सा होंगी। दोनों न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया ने बीते गुरुवार राष्ट्रीय मंत्रिमंडल के सामने अपनी अपनी फिर खुलने की योजनाओं को पेश किया था। इसी के बाद प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने घोषणा की थी कि फेडरल सरकार उन राज्यों के साथ बच्चों और शिक्षकों की जांचों का खर्चा आधा आधा बांटेगी जो राज्य इस प्रणाली को लागू करेंगे। वहीं क्वींसलैंड में आज 10 कोरोना संबंधी मृत्यु और 11,947 नए स्थानीय रूप से अधिग्रहित कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में 863 कोरोना मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 47 गहन चिकित्सा केंद्र में देखभाल पा रहे हैं। क्वींसलैंड में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 85,112 है। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया में ओमिक्रॉन लहर धीमी पड़ती नजर आ रही है। तस्मानिया ने आज 625 नए कोरोना मामले दर्ज किए हैं, जो कि कल सामने आए मामलों में से 100 कम है। वहीं साउथ ऑस्ट्रेलिया के कोरोना मामलों में भी गिरावट देखी गई है। राज्य में गहन चिकित्सा केंद्र में भर्ती लोगों की संख्या 37 से अब 24 पर आ गई है। राज्य में 2,062 मामले दर्ज किए गए हैं और कोई भी कोरोना मृत्यु नहीं दर्ज की गई है। यह इस साल की राज्य की सबसे कम तालिका है। संचार मंत्री पॉल फ्लेचर ने आज एक नए ऑनलाइन सुरक्षा कानून के लागू होने की घोषणा की है। उनका कहना है कि इंटरनेट कानून के बाहर नहीं हो सकता। ये कानून पिछले साल संसद द्वारा पारित किया गया था, जो कि आज से लागू किया जा रहा है।
What that means is that we now have strong new powers for the e-safety commissioner to deal with the serious cyber abuse of Australian adults online. From today, the trolls need to be on notice because if you engage in vicious online abuse of somebody, then you can be exposed to the powers that the e-safety commissioner has.
श्री फ्लेचर का कहना है कि इस कानून से उन ऑस्ट्रेलियाइयों को सुरक्षा प्राप्त होगी जो ऑनलाइन उत्पीड़न का शिकार होते हैं। वे किसी भी ऑनलाइन उत्पीड़न की शिकायत esafety.gov.au पर कर सकते हैं। अगर शिकायत के बाद कमिश्नर ये पाते हैं कि ऑनलाइन सामग्री आपत्तिजनक थी, तो वे उसे सोशल मीडिया से हटाने का आदेश दे सकते हैं। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पिछले चार दिनों में चार न्यूयॉर्क पुलिस अधिकारियों पर गोली से हमले होने के बाद न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने देश में गोलीबारी की समस्या के त्वरित उपाय खोजने की मांग की है।
I just want to say this breaks our hearts all over the state, and this has happened with far too much frequency. It's a resounding call to action to say those in Washington who will not heed the call, whether it was the children of Sandy Hook who were slaughtered in their classroom and continue up to this day, we have to do more to fight the scourge of illegal guns on our streets.
घरेलू झगड़े को सुलझाने पहुंचे दो अफसरों में से एक पुलिस अधिकारी गंभीर रूप से घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती है, जबकि दूसरे ने इस झगड़े में अपनी जान गंवा दी है। गोली चलाने वाले व्यक्ति को एक तीसरे अफसर ने गोली मारकर ही भागने से रोका था। जान गंवाने वाले अफसर 22 वर्षीय जेसन रिवेरा थे, जो 2020 में ही पुलिस बल में शामिल हुए थे। दूसरी ओर अधिकारियों का कहना है कि मेक्सिको के कैरिबियाई तट पर एक होटल में गोलीबारी के दौरान दो कैनेडियाई नागरिकों ने अपनी जान गंवा दी है। अधिकारियों का कहना है कि घायल हुए तीन लोगों को अस्पताल ले जाया गया था, जिनमें से दो को नहीं बचाया जा सका। होटल में होने वाली ये गोलीबारी एक होटल आगंतुक के साथ हुई थी, जिनका लूट, ड्रग्स और हथियारों के जुर्मों का लंबा रिकॉर्ड रहा है। अधिकारियों का कहना है कि दोनों मृतक व्यक्तियों का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड था। अन्य एक होटल आगंतुक मार्क क्वेल का कहना है कि हादसा कहीं भी हो सकता है।
I'm a type of person that finds if you look for trouble, you're going to find it. You know, and that can be in Mexico, it can be in friggin Ottawa, Canada, it can be in New York City, anywhere you go. If you look for trouble, you'll find it.
इससे पहले नवंबर में भी प्योटो मोरेलोज में हुए एक शूटआउट में दो ड्रग डीलर मारे गए थे। और अब खबरें भारत से। भारत में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड 19 के मद्देनजर शनिवार को राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने की अवधि बढ़ाकर 30 जनवरी तक कर दी। एक सरकारी बयान के अनुसार इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। अपर मुख्य सचिव गृह अविनाश कुमार अवस्थी द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार स्कूलों की बंदी 30 जनवरी तक बढ़ा दी गई है और ऑनलाइन कक्षाएं चलती रहेंगी। सरकार ने पहले राज्य में कोविड 19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर शैक्षिक संस्थानों की 23 जनवरी तक बंदी के आदेश दिए थे। बता दें कि देश में पिछले तीन दिनों से कोरोना वायरस के दैनिक मामले 3 लाख से भी अधिक आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 3,37,704 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि कल के मुकाबले कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की गई है। उधर भारत के 73वें गणतंत्र दिवस समारोह का आज दिल्ली के राजपथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल होगा। इस दौरान राजपथ पर एक तरफ देश की सैन्य ताकत दिखेगी तो दूसरी तरफ देश की सांस्कृतिक झलक भी देखने को मिलेगी। भारतीय सेना ने शनिवार को एक बयान जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि इस साल गणतंत्र दिवस परेड में 16 पैदल दस्ते, 17 सैन्य बैंड और विभिन्न राज्यों, विभागों और सशस्त्र बलों की 25 झांकियां हिस्सा लेंगी। बयान में कहा गया है कि गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सेना का प्रतिनिधित्व एक घुड़सवार दल, 14 मशीनीकृत दल, 6 पैदल टुकड़ियां और विमानन विंग के उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों के एक फ्लाइट पास्ट के द्वारा किया जाएगा। पहली बार वायुसेना के 75 एयरक्राफ्ट राजपथ पर अपनी ताकत दिखाएंगे। रफाल तो होगा ही, 75 का आकार बनाते हुए 17 जागुआर एक साथ राजपथ के ऊपर से उड़ान भी भरेंगे। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए मात्र 8,000 लोग ही इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकेंगे। और अब डॉलर का हाल। आज यानी रविवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 53 रुपये 43 पैसे और एक अमरीकी डॉलर की तुलना में कीमत 72 सेंट्स थी। और अब खबरें खेल के मैदान से। टेनिस ऑस्ट्रेलिया के अध्यक्ष क्रेग टिली का कहना है कि उन्होंने फेडरल सरकार से कई बार टीका ना पाए खिलाड़ियों के स्पर्धा में खेलने की अनुमति को लेकर सफाई मांगी थी, लेकिन ओमिक्रॉन की इस मौजूदा लहर में सूचना बार बार बदलती रही थी। श्री टेली नोवाक जोकोविक के साथ हुए पूरे मामले पर सफाई दे रहे थे, जिसमें टेनिस ऑस्ट्रेलिया और फेडरल सरकार दोनों ही विवादों में घिर गए थे। 29 नवंबर को स्वास्थ्य मंत्री ग्रेग हंट द्वारा क्रेग टिली को लिखी गई एक चिट्ठी में साफ कहा गया था कि कोरोना संक्रमण की वजह से टीकाकरण ना होना संगरोध मुक्त यात्रा के लिए छूट पाने का आधार नहीं हो सकता। श्री टिली सीधे तौर पर इन नियमों में बदलाव पर कोई टिप्पणी करने से बचते नजर आए। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि नोवाक जोकोविक संस्था पर केस नहीं कर रहे हैं और अगले साल ऑस्ट्रेलिया खेलने आ सकते हैं। और अंत में एक नजर कल यानी सोमवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल तेज धूप खिली रहेगी। यहां अधिकतम तापमान 33 डिग्री जबकि न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में उमस के साथ बारिश की आशंका है। यहां अधिकतम तापमान 29 डिग्री जबकि न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में उमस के साथ धूप भी रहेगी। यहां अधिकतम तापमान 35 जबकि न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देश की राजधानी कैनबरा में धूप छांव का मौसम अनुमानित है। यहां का अधिकतम तापमान 28 जबकि न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिडनी में भी बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 27 जबकि न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। ब्रिस्बेन में कल बरसात की आशंका जताई जा रही है। अधिकतम तापमान 30 जबकि न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। डार्विन में कल बरसात के साथ तेज तूफान की आशंका है। अधिकतम तापमान 31 जबकि न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल धूप छांव का मौसम रहेगा। दिल्ली का अधिकतम तापमान 16 जबकि न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।